ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यार ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरण्णुमीरिदे मत्तु यार दिव्यध्वनियु लोकहितवमाडिदे ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ प्रतिमा का प्रकरण चल रहा है, पाठ 13वां, 33वां पेज। कल जो पुस्तक आई है सम्यक ज्ञान संस्कार, जिसके हाथ में न हो दे सकते अंदर है। प्रतिमा, प्रतिमा किसे कहते हैं, उनके कितने भेद होते हैं, जिनके माध्यम से श्रावक सम्यक दर्शन को धारण कर पंच पापों का क्रमशः त्याग करते हुए संयम की ओर बढ़ने का अभ्यास करता है, उसे प्रतिमा कहते हैं। सम्यक्त्व के बिना संयम की ओर बढ़ना संभव नहीं। सम्यक्त्व के बिना चारित्र को पालन करना संभव नहीं। वह चारित्र कौन सा चारित्र? सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन आने के बाद ही चारित्र सम्यक चारित्र कहलाता है। इसलिए यह बात ध्यान में रखना है, केवल चारित्र का पालन तो हर कोई कर सकता है, लेकिन सम्यक चारित्र का पालन वही कर सकता है जिसके जीवन में सम्यक दर्शन आया हो और पंच पापों को त्यागने का उद्देश्य आत्मकल्याण के लिए हो और कषाय की निवृत्ति हो गई हो। इसमें दो बातें मुख्य हैं, संयम धारण करना का मतलब प्रतिमा धारण करना, या महावृति महाव्रत को धारण करके जो आत्मकल्याण हेतु पापों का त्याग करते हैं, ये पापों का त्याग ही संयम है। पंच पाप में मुख्य पाप है परिग्रह। वह एक परिग्रह कम होने पर शेष चार पाप जो होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, ये अपने आप कम हो जाते हैं, अपने आप कम हो जाते हैं। 13वां पाठ निकालना है। पापों को कम करने का लक्ष्य कषायों को कम करने के लिए होता है। बाह्य पाप पांच होते हैं, उसमें जो परिग्रह है वो सबसे बड़ा पाप है, ये तो मालूम चल गया है। वह परिग्रह ही कषाय की उत्पत्ति के लिए कारण बनता है। वस्तु को देख देख करके वस्तु की इच्छा, ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, ये स्वाभाविक है। और प्रत्येक संसारी प्राणी, प्रत्येक संसारी जीव, वह यही करता है। क्या करता है? वस्तु को देखता है और वस्तु से मोहित होता है। वस्तु को देखना, वस्तु से मोहित होना, ये कब से हो रहा है ऐसा? ये बीमारी अनादिकाल की बीमारी है। तो वस्तु को त्याग करो, यह उपदेश दिया है भगवंतों ने। वस्तु को त्याग करने का उपदेश दिया है। क्यों करना? इसको देखने से ही मन बिगड़ता है, इसलिए इसको देखने से ही मन खराब होता है, इसलिए मन में कषाय उत्पन्न होती है, इसलिए वस्तु से दूर रहो, यानी उसको त्यागो। वस्तु से यदि मन खराब होता है तो फिर वस्तु से डरें क्या? डर के कहाँ भागोगे? तीन लोक में रहना ही पड़ेगा, वस्तुओं के बीच में ही रहना पड़ेगा। कहीं भी जाओ, हर जगह वस्तु हैं, किस किस को देख करके डरोगे, किस किस को देख करके भागोगे? न डरना है न भागना है, क्या करना है? केवल वस्तुओं की इच्छा का त्याग करना है। इच्छाओं को त्याग करने के लिए वस्तु का त्याग का उपदेश हुआ है। राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। जो सज्जन पुरुष होता है वह वस्तु का त्याग इसलिए करता है कि उसको इच्छा को त्यागना है। इच्छा के त्याग के उद्देश्य अगर वस्तु का त्याग होता है तो वह त्याग सार्थक माना जाता है, नहीं तो वह सार्थक नहीं। इच्छा का निरोध तो नहीं हुआ, लेकिन बाहर से वस्तु को त्यागा तो कषाय नहीं गई। तो ऐसी परिस्थिति में सम्यक चारित्र उपलब्ध नहीं होगा। चारित्र उपलब्ध होगा लेकिन सम्यक विशेषण नहीं रहेगा। क्या रहेगा? चारित्र। कैसा चारित्र? फिर नाम मात्र। उसके लिए क्या शब्द जोड़ा जाए? सम्यक नहीं जोड़ते हैं तो क्या जोड़ा जाए? मिथ्या चारित्र। वह मिथ्या चारित्र है जिसमें कषाय का निरोध नहीं हुआ है। आप प्रतिमा ले लें, महाव्रत ले लें, कुछ भी साधना करें, जिस वस्तु को आप छोड़ते हैं उस वस्तु के प्रति रहने वाली इच्छा को भी छोड़ना चाहिए। इच्छा कम हो इसलिए वस्तु को छोड़ना चाहिए। एक दिन उपवास कर रहे हैं तो उपवास करने से पहले ही सोचना चाहिए कि मैं उपवास किस हेतु से करूं, ये विचार करना चाहिए। भोजन के प्रति जो ममत्व भाव होता है उस ममत्व को त्यागने के लिए मैं उपवास करूं, यानी ममत्व की इच्छा, इच्छा को त्यागने के लिए उपवास करूं, इच्छा को त्यागने के लिए रस परित्याग करूं, इच्छा को त्यागने के लिए एकासन करूं, इच्छा को त्यागने के लिए सब कुछ करूं, ये भाव होना चाहिए। वस्तु को छोड़ने मात्र से कुछ नहीं होता, ये अच्छी तरह से पहले समझ में आना चाहिए। क्योंकि चारित्र ग्रहण करते समय इसी बात को सबसे ज्यादा सोचा जाता है। सम्यक दर्शन तो जीवन में आ गया, अब चारित्र को ग्रहण करना है तो किस हेतु से करना है? इच्छा को निरोध करने के लिए करना है। तो श्रावक इच्छा का निरोध एक देश करने के लिए अनुरत को, प्रतिमाओं को धारण करता है, और मुनि महाराज समस्त इच्छाओं का निरोध करने के लिए महाव्रतों को धारण करते हैं, और पंचम पाप जो परिग्रह पाप है उसको पूर्णतः त्याग कर देते। पूर्ण त्याग। अगर इच्छा का निरोध नहीं हुआ और पूर्ण त्याग हुआ तो गुणस्थान बनेगा क्या मुनि महाराज का? तो कौन सा गुणस्थान रहेगा? पहले से लेकर पांचवा तक रह सकता है। सम्यक दर्शन हो तो पांचवा भी रहेगा, चौथा भी रहेगा। नहीं, सम्यक दर्शन भी नहीं हो तो पहला गुणस्थान रहेगा। तो उसी प्रकार प्रतिमाओं के संबंध में भी ये जानकारी रखना चाहिए। यदि हमने सम्यक दर्शन धारण किया और प्रतिमाओं को ले लिया लेकिन इच्छा का निरोध नहीं किया, सम्यक दर्शन है, प्रतिमा का पालन हो रहा है किंतु इच्छा का निरोध हो करके नहीं हो रहा है, तो वह प्रतिमा सम्यक प्रतिमा या मिथ्या प्रतिमा? मिथ्या प्रतिमा। मतलब यह है कि बाह्य परिग्रह जितने हमने कम किया उसका मूल उद्देश्य होना चाहिए उन वस्तुओं के प्रति अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, जिसको त्यागा है उसके प्रति कोई इच्छा नहीं और मुझे अनावश्यक है। ये पाप बंद के कारण समझे जाते थे इसलिए त्यागा, क्योंकि इनके ऊपर मेरा स्वामित्व था, स्वामित्व होने के कारण से इच्छा का निरोध नहीं हो पा रहा था। अब हमने स्वामित्व ही छोड़ दिया, वस्तु भी गई और वस्तु का स्वामित्व भी उतर गया, दोनों जब उतर जाते हैं तो पंचम गुण स्थान बनता है। केवल वस्तु को दूर किया पंचम गुण स्थान नहीं बनेगा। वहां पर प्रश्न आता है, तुमने वस्तु को क्यों छोड़ा, इसका क्या उत्तर
क्या होगा?
कुछ उद्देश्य पूर्वक ही छोड़ा होगा ना, उद्देश्य इच्छा का निरोध करना ही उद्देश्य हो ये कोई जरूरी नहीं, अन्य कोई उद्देश्य भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है? ख्याति पूजा लाभ, ख्याति पूजा लाभ के लिए भी वस्तु का त्याग हो सकता है। हो सकता है किसी के मन में प्रतिमा लेने से बहुत, कितने बड़े धर्मात्मा उसने प्रतिमा ले ली, ऐसा नाम मिलेगा, ऐसा सम्मान मिलेगा। ख्याति पूजा लाभ, इस तीन में से ये कौन सी बात हो गई? ख्याति, सम्मान मिलेगा और सम्मान मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है, लोग आदर के साथ देखने लगते हैं, सम्मान मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है ये कह करके वह ख्याति के वजह से यदि प्रतिमा धारण कर ले तो केवल वस्तु का त्याग होता है, कषाय का त्याग नहीं होता। ख्याति की चाह है, तो ख्याति की चाह है तो परमार्थ की चाह नहीं है, मोक्ष की चाह नहीं है, चाह की ही चाह है। चाह, ख्याति लाभ पूजा, ये चाह है कि नहीं? चाह है, चाह की ही चाह है, कुछ लाभ के लिए कर रहा है। तो भूल करके भी अपने जीवन में कभी भी ऐसी प्रतिमा धारण नहीं करना। काय के लिए करना? आत्म कल्याण के लिए करना। आत्मा का कल्याण किसमें है? इच्छा के त्याग में कि इच्छा के रखने में? तो ख्याति लाभ और पूजा, ये जो तीन भाव हैं, ये हमारे भाव व्रतों को बिगाड़ देते हैं, द्रव्य व्रतों को बिगाड़ नहीं सकते। वो आप परिग्रह का त्याग कर सकते हैं, त्यागी बन करके रह सकते हैं, वस्तु से दूर रहेंगे, वस्तु दूर हो सकती है लेकिन इच्छा दूर नहीं होगी। ख्याति लाभ और पूजा, कोई लाभ के लिए छोड़ता है, कोई ख्याति के लिए छोड़ता है, कोई पूजा के लिए, पूजा यानी प्रसिद्धि के लिए, पूजा यानी आदर सत्कार मिलेगा इससे, लोग मुझे पूजेंगे, बहुत अच्छा कहेंगे, आदर्श कहेंगे, प्रतिमाधारी बन गए, ऐसे आदर्शता के वचनों को सुनने के लिए जिज्ञासा है। इच्छा का निरोध की कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ना, आ सकते हैं, उसका निरोध ऐसा ही करना, जिस उद्देश्य से प्रतिमा को धारण किया है वह उद्देश्य मेरा पूर्ण हो, यानी इच्छाओं का निरोध हो, कर्म की निर्जरा हो, आत्मा का कल्याण हो, लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति हो। ये जो लक्ष्य बनाते समय, लेते समय लक्ष्य था, लेते समय ही मजबूत लक्ष्य बना करके लेंगे तो फाउंडेशन मजबूत रहेगा। ये कितना अच्छा, लेते समय ही मजबूत, लेते समय हम कमजोर रहेंगे तो बीच में कुछ भी हो सकता है। लेते समय ही ऐसा संकल्प, इस संकल्प से मैं डिगूंगा नहीं, डिगूंगा तो भी प्रायश्चित करूंगा, प्रतिक्रमण करूंगा तुरंत, भूल चूक होकर के भी एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए भी ऐसे परिणाम ख्याति लाभ पूजा के आ गए, मैं प्रतिक्रमण करूंगा, पश्चाताप करूंगा और पुनः मेरी आत्मा को मैं मोक्ष मार्ग पर लगाऊंगा। ये स्थितिकरण, अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग पर लगाना, ये स्थितिकरण अंग है। ये स्थितिकरण अंग दूसरे के द्वारा होने की अपेक्षा अपने द्वारा होना बहुत मुख्य माना जाता है। कोई रास्ते पर लगाने वाला उपचार से बाहर से प्रयत्न कर सकता है, लेकिन वह प्रयत्न जब तक हमारे भाव जागृत नहीं, हमारे लिए जब तक स्वीकृति नहीं, तब तक हम मोक्ष मार्ग पर लग नहीं सकते। तो दूसरे से इतना अपेक्षा नहीं रखना कि मैं अगर डिग जाऊं तो गुरु मुझे ठीक कर लेंगे या अन्य कोई सहधर्मी मुझे आकर के समझा देगा, क्या डरना, हाँ ले लो चलो, ऐसा नहीं। मुझे अपना कल्याण स्वयं को करना है, सेल्फ डिपेंड होकर के दृढ़ संकल्प के साथ मैं इन व्रतों को लेकर के कभी भी ख्याति लाभ पूजा में नहीं पड़ूंगा, ये संकल्प किया जाए तो अवश्य वह संकल्प आपको साहस देता है, प्रति समय रक्षा करता है। तुरंत याद आता है ना, मैंने तो प्रतिमा लेते समय ऐसा संकल्प किया था, अब मैं अपने परिणामों में स्थित हूं या नहीं, मोक्ष मार्ग में हूं या नहीं, इसका संशोधन प्रतिनित्य होता है प्रतिक्रमण के द्वारा। प्रतिक्रमण करते समय किसका प्रतिक्रमण होता है, हम अगर मोक्ष मार्ग से कहीं डिग गए हों उसका प्रतिक्रमण। ये रोज रोज संशोधन, आत्म संशोधन होता है और ऐसा आत्म संशोधन पूर्वक प्रतिमा का लेना सार्थक होता है और उसका पालन हमें करना चाहिए। इसको प्रतिमा कहा है, देखो तो कैसा शब्द है, प्रतिमा यानी स्टैचू भी होता है, स्टैचू भगवान की प्रतिमा, गांधी जी की प्रतिमा, प्रतिमा यानी स्टैचू भगवान की प्रतिमा, अरहंत भगवान की प्रतिमा, अरहंत भगवान की प्रतिमा के समान बनने के लिए हम प्रतिमा धारण कर रहे हैं। प्रतिमा यानी स्थित होना, प्रतिमा हिलती डुलती नहीं है, स्थिर रहने का नाम प्रतिमा, स्टैचूवत एक जगह। तो अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग में स्टैचूवत स्थिर करना, मोक्ष मार्ग में आत्मा को स्थिर करने के लिए इन प्रतिमाओं का उपदेश हुआ है। हम स्थिर हो गए यानी मतलब क्या बन गए, प्रतिमाधारी बन गए। हम चंचल हैं तो अभी प्रतिमा नहीं बने, प्रतिमा का धारण भी नहीं हुआ और प्रतिमा भी नहीं बने। आत्मा प्रतिमा बन जाए, किस उद्देश्य से प्रतिमा बन जाए, दूसरा अर्थ, प्रति यानी वापस, प्रति लौट करके आना, किसकी ओर, माँ की ओर, माँ की ओर। आ हटा दो। आत्मा, आत काय आहे, आत्मा आहे। आत्मा की ओर लौटने का नाम प्रतिमा है। आत्मा प्रतिमा, प्रति लौट करके आना, अंदर आना, मां की ओर आना। आत्मा ही मां है और यह मां बहिर्मुखी हो जाए, बहिरात्मा। आत्मा बहिर्मुखी हो जाए, आत्मा मां नहीं रहेगा तो मामा बन जाएगा। कहीं भी घूमने वाला मामा। तो चले हम प्रतिमा की ओर अपना लक्ष्य बनाकर। परमार्थ हमारा लक्ष्य है, कषायों को जीतना, कषाय विजयी होना हमारा ध्येय है। उस ध्येय की पूर्ति के लिए हम स्वीकार करें आत्मकल्याण ही, तो अपने जीवन को समर्पित करें खुद के लिए ही, खुद के जीवन को खुद के कल्याण के लिए समर्पित करें। प्रतिमाएं 11 होती, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामयिक प्रतिमा। देखो क्या नाम है इसका, हाँ गलत नहीं बोलना है उच्चारण, साम मां का उच्चारण नहीं होना चाहिए। सामयिक प्रतिमा, प्रोषधोपवास प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। इन सारी प्रतिमाओं में श्रावक बाह्य पाप को कम करता 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 चला जाता है, क्योंकि श्रावक जीवन परिग्रहमय जीवन है। वो संपादन बहुत करता है, बहुत संग्रह करता है, पहला संग्रह करता है और फिर त्यागने के लिए तैयार होता है। पहला इकट्ठा करता है, फिर बाद में धीरे धीरे हटाता है। कितना हटाता है, थोड़ा थोड़ा समझ थोड़ा थोड़ा, एक साथ नहीं। पुण्य के संग्रह में संग्रह हो जाता है और त्याग करने के लिए न पुण्य चाहिए न पाप चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। पुण्य भी नहीं चाहिए, पाप भी नहीं चाहिए। पाप का उदय पुण्य के उदय से कोई मतलब नहीं। पाप के उदय में रहते हुए भी हम व्रती बन सकते हैं और पुण्य का उदय रहते हुए भी हम व्रति बन सकते हैं। असल में व्रति बनना किससे होता है, देखो विचार करें। व्रति बनने के लिए कोई पुण्य कर्म का उदय चाहिए क्या? लोग तो ऐसा ही कहते हैं प्राय कि पुण्य इतना नहीं है हमारा और प्रतिमा हम धारण नहीं कर सकते, तो कौन सा पुण्य चाहिए? तीर्थंकर प्रकृति का बंध चाहिए क्या? नहीं, पुरुषार्थ चाहिए ये ठीक है, लेकिन क्या चाहिए? इतना चाहिए, प्रतिमा वही व्यक्ति धारण कर सकता है जिसको चारित्र मोहनी कर्म का क्षायोपशम हो। तो चारित्र मोहनी कर्म तीन है यहां, चारित्र को रोकने वाले। अब प्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी और संज्वलन नहीं, दो हैं अप्रत्याख्यानावरणी और प्रत्याख्यानावरणी। चारित्र को रोकने वाले, संयमी बनने के लिए बाधक कषाय दो हैं, अप्रत्याख्यानावरणी प्रत्याख्यानावरणी। अब हम पूछते हैं कि ये दोनों पाप कर्म की कोटि में आते हैं कि पुण्य कर्म के? मोहनी कर्म पाप कर्म है क्या पुण्य कर्म? तो पाप कर्म ही तो चाहिए दीक्षा लेने के लिए, लेकिन उसका क्षोभशम चाहिए। ये चर्चा जो चलती है कभी कभी, बहुत बार चर्चा चलती है आप लोगों के बीच में, कोई भी व्रत लेना हो तो पुण्यवान पुण्यवान पुण्यवान, बहुत भाग्यशाली। कहाँ भाग्यशाली? पुरुषार्थवादी या तो पाप का क्षयोपशम वाला ये कह सकते, और क्षयोपशम भी बढ़ता है पुरुषार्थ के माध्यम से ही। पुरुषार्थ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वस्तु है। पुरुषार्थ क्योंकि उदय में आया हुआ जो चारित्र मोहिनी कर्म है, चारित्र को रख सकता है, प्रतिमा को लेने के लिए रोकने वाला कौन है? अप्रत्याख्यानावरणी कषाय। तो इसके तीव्रोदय में जीव पुरुषार्थ नहीं कर पाता, करता भी है कर सकता है लेकिन सफलता जल्दी नहीं मिल पाती, ये अवश्य कहा है। किंतु पुरुषार्थ करने के लिए मना किया है क्या? नहीं किया। पुरुषार्थ करते रहो, आज न कल समय आएगा जिस दिन चारित्र की उपलब्धि होगी। पुरुषार्थ करते रहो, अभ्यास करते रहो, एक आध साल अभ्यास करो, प्रतिमाओं को लेना है लेना है लेना है, हैमरिंग भी होगा लेना है लेना है लेना है, हैमरिंग भी होगा और अभ्यास भी होगा। पाप से कैसे मुक्त हुआ जाता है उसका संस्कार आएगा, कैसे खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, क्या क्या क्रियाएं किस प्रकार से करना चाहिए, ये सारी शिक्षाएं अभ्यास के काल में मिलती। तो प्रतिमा लेने के लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। हमारा कर्म चाहे तीव्र हो चाहे मंद हो, हम प्रमादी न बने, बस इतना पर्याप्त। क्योंकि उदय में आया हुआ कर्म तो ये तो नहीं कहता कि तुम पुरुषार्थ मत करो, क्योंकि वो पुद्गल है। पुद्गल कर्म आपको पुरुषार्थ से रोक सकता है क्या? उदयागत द्रव्य कर्म, एक जैसे एक हाथ में कुलाड़ी रहती है और वह कुलाड़ी ये नहीं कहती कि तुम वस्तु को काटो और उसका उपयोग कर लो, या ये भी नहीं कहती कि तुम्हारा पांव काटो और दुखी हो जाओ। कुलाड़ी कुलाड़ी है, हाथ में है, उसका सदुपयोग या दुरुपयोग, सदुपयोग का पुरुषार्थ करना क्या दुरुपयोग का पुरुषार्थ करना, ये हमारे ऊपर डिपेंड है क्या कुलाड़ी पर डिपेंड है? तो द्रव्य कर्म उसी तरह से हमारे लिए कुलाड़ी का काम करता है। इसके उदय का दुरुपयोग करेंगे तो हम दुखी होंगे, उसके उदय को सदुपयोग करने लग जाएंगे तो सुखी होंगे। तो सदुपयोग क्या? हम पुरुषार्थवादी बने, ये सदुपयोग है। और पुरुषार्थवादी न बन पाए तो दुरुपयोग है। तो क्या करना है? अपने को सोचना है, कर्म कर्म कहते हुए नहीं बैठना है। कर्म कर्म कहना ही धर्म हो गया, धर्म उधर रह गया, कर्म कर्म कहते हैं धर्म ही छूट गया, वही धर्म हो गया। इन प्रतिमाओं का स्वरूप बहुत अच्छी तरह से हमें समझना है। पहली प्रतिमा का नाम दर्शन प्रतिमा। दूसरा प्रश्न उठाया है, इन प्रतिमाओं को पालन करने वाले श्रावक को कौन सा गुणस्थान होता है? मालूम है ना, उपरोक्त 11 प्रतिमाओं में से एक दो या कुछ सब प्रतिमा या सब प्रतिमाओं को सम्यक तो सहित धारण करने वाले श्रावक को नियम से 5वां गुणस्थान होता है। जिस श्रावक की जितनी प्रतिमाएं होती हैं उसके अनुसार उनकी भाव विशुद्धि व कर्म निर्जरा होती है। पंचम गुणस्थान तो प्राप्त होता ही है, किंतु प्राप्त होने के बाद जो परिणामों की विशुद्धि है वो सबकी अलग अलग रहेगी। जिसकी एक प्रतिमा है, एक प्रतिमा संबंधी कर्म निर्जरा विशुद्धि होने से उस विशुद्धि के अनुरूप निर्जरा होगी। दो हो तो विशुद्धि अधिक है, तो कर्म निर्जरा अधिक, विशुद्धि भी अधिक। तीन हो तो दो से ज्यादा, तीन में विशुद्धि कर्म निर्जरा आदि अधिक है। इस प्रकार विशुद्धि के स्थान, कर्म निर्जरा के स्थान प्रतिमा के अनुरूप उत्तरोत्तर बढ़ते बढ़ते जाते। तो आप लेते समय जितने का लेंगे उतनी विशुद्धि मानी जाएगी। एक ही लिया है तो जगन विशुद्धि, दो लिया है तो मध्यम विशुद्धि, दो से दस तक लिया है तो मध्यम विशुद्धि, उसमें भी उत्तरोत्तर फर्क आएगा, और ग्यारह सब लिया है तो उत्कृष्ट विशुद्धि। क्योंकि बाहर का भी कम, पाप का कम होना हुआ है, और अंतरंग का भी वस्तुओं के प्रति होने वाली कषाय परिणति का विजय हुआ है, उसको जीता है हमने, इसलिए विशुद्धि बढ़ती बढ़ती जाती है। यहां पंचम गुणस्थान होता है प्रतिमाधारी को। एक प्रतिमा को धारण करने वाला दूसरी प्रतिमा का अभ्यासु होता है, ये नियम है। अगर एक भी ले रहे हैं तो दूसरी प्रतिमा का अभ्यास स्टार्ट हो गए, क्योंकि पहली प्रतिमा इसलिए सर्वप्रथम रखा है कि शेष प्रतिमाएं मिथ्या सिद्ध न हो जाए। इसलिए सम्यक तो पूर्वक धारण करो, इस बात को लक्ष्य में रख करके प्रथम प्रतिमा का विधान हुआ है। दर्शन प्रतिमा को लास्ट में क्यों नहीं रखा? सम्यक वो सभी मिथ्या रहेंगे ना, सम्यक दर्शन के बिना तो सब शेष प्रतिमाएं मिथ्या रूप हैं, मिथ्या संज्ञा वाले हैं, मिथ्या चारित्र कहलाएगा, मिथ्या देश संयम। तो पहला का क्यों रखा? ऊपर के जो हैं वो सभी मिथ्या न हो जाएं, इसलिए पहले को लेकर के ही सभी प्रतिमाओं को लेने का प्रयत्न करना है। और पहली प्रतिमा अगर ले रहा है तो पहली प्रतिमा, अकेली प्रतिमा को कभी लिया ही नहीं जाता, कम से कम दो लिया जाता है। पहली प्रतिमा क्या लेना? जब आप चतुर्थ गुणस्थान में थे वहां सम्यक दर्शन का पालन तो कर ही रहे थे, आठ मूल गुणों का पालन कर रहे थे, तो है ही, पहले से ही सम्यक दर्शन है, तो पहली प्रतिमा लेने की जरूरत क्या है? प्रतिमाएं पंचम गुणस्थान में प्रवेश करने के लिए है ना, पंचम गुणस्थान में प्रवेश करने के लिए है, और सम्यक दर्शन प्रतिमाओं को लेने के लिए है, सम्यक दर्शन प्रतिमाओं को लेने के लिए है, और प्रतिमाएं पंचम गुणस्थान में जाने के लिए है। तो सम्यक दर्शन पूर्वक प्रतिमाओं को धारण करेंगे तब हम पंचम गुणस्थान में जाएंगे, या ऐसा ही चले जाएंगे सम्यक दर्शन के बिना? तो सम्यक दर्शन पूर्वक ही हम पंचम गुणस्थान में जाते। तो इसलिए पहला क्या लेना पड़ेगा? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन लेने वाला सम्यक दर्शन ले लेता है तो प्रथम प्रतिमा लेने की जरूरत नहीं है, जबकि उसका नाम दर्शन प्रतिमा है। दर्शन प्रतिमा को अगर लेता है कोई तो एक ही ले ले, कोई दिक्कत नहीं, किंतु पंचम गुणस्थान अकेली दर्शन प्रतिमा को धारण करने मात्र से नहीं होगा। वह दर्शन प्रतिमा को अभ्यास, दूसरी प्रतिमा का अभ्यास करने के लिए लेता है। देखो इसको समझो, दर्शन प्रतिमा को क्यों लेता है? दूसरी प्रतिमा का अभ्यास करने के लिए दर्शन प्रतिमा लेता है। दर्शन प्रतिमा में विशेष कोई आचार विचार है ही नहीं। चतुर्थ गुण स्थान में जो 25 मल दोषों से रहित सम्यक्तों का पालन करते थे वही यहां करना है, और 8 मूल गुण तो थे ही। अब यहां आने से क्या फर्क पड़ा? प्रथम प्रतिमा में आने से क्या फर्क पड़ा? कुछ विशेष हुआ क्या? तो पंचम गुण स्थान कैसे? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन उतने मात्र से पंचम गुणस्थान नहीं बना। षड आवश्यक तो है ही, लेकिन संयम भी कहाँ आया? षड आवश्यक में से संयम जो संकल्प पूर्वक आना चाहिए, पाप पंच पाप त्याग संबंधी संकल्प अभी कहाँ हुआ है? स्थूल पापों का त्याग था, वो चतुर्थ गुणस्थान का कारण था। स्थूल पापों का त्याग चतुर्थ गुणस्थान का कारण, और उसके साथ सम्यक दर्शन लेना, ये चतुर्थ गुणस्थान का कारण। अब जो स्थूल पापों को त्याग दिया है उसमें और कम करना है, और कम करते हुए जाने के लिए ये प्रतिमाएं रखी गई। तो दूसरी प्रतिमा लेने वाला श्रावक दो ले रहा है, तो वह देखो क्या करता है, भोजन बनाएगा तो पानी छान कर लाएगा, जीवाणुओं को छोड़ कर लाएगा। ये पानी संबंधित, क्योंकि पानी 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 की ही चर्चा क्यों होती है? सबसे ज्यादा हिंसा पानी से ही होता है, और प्रतिमाधारी खान पान में शुद्ध भोजन करेगा। शुद्ध भोजन का मतलब शुद्ध भोजन, ताजा भोजन। हाँ, जीव दया का भी पालन जिसमें हुआ हो उसको ही शुद्ध बोला जाता है। शुद्ध भोजन जैसे धान है, तो उसको जीव रहित धान देख करके, शोध करके, पीस करके लाएगा, उससे भोजन तैयार करेगा। और उसको शोधे बिना पीस करके लाया तो शुद्ध भोजन तैयार होगा कि अशुद्ध भोजन? अशुद्ध भोजन तैयार होगा। तो भोजन को शुद्ध बनाना है तो प्रत्येक वस्तु की तरफ ख्याल जाना आवश्यक है। उन वस्तुओं की काल मर्यादा को ध्यान में रखना, यह बड़ा आवश्यक है। तो सबसे पहले पानी का कैसा करे प्रश्न आता है, कैसे पानी लाएंगे, कहां से लाएंगे, रोज चाहिए, रोज की समस्या। जैसे मुनि महाराजों को आप आहार दान देते समय जिस पानी को देते हैं ना, वैसा पानी कैसा लाते हैं? उसको छान करके, जीवाणु करके, सावधानी से लाते हैं। तो जब चौका लग जाता है, खुद शुद्ध भोजन करने के लिए लगता है ना, कि महाराज के लिए निमित्त से लगता है? नहीं, खुद के लिए लग रहा है, चौका खुद के लिए लग रहा है। उसमें अतिथि आएंगे तो उनको भी देंगे, ये लक्ष्य है। तो खुद के लिए जो शुद्ध भोजन तैयार हुआ है वो कितना प्रमाद छोड़ करके, सावधानी के साथ सुबह से लेकर 10 बजे तक आपने कितना विकल्प, शुभ विकल्प किया। ऐसा विकल्प यदि आप रोज ही अपने लिए करने लग जाएं, तो इसी का नाम तो शुद्ध भोजन है। जैसे चौका लगाते समय करते थे वैसा डेली कंटिन्यू करना उसको। किंतु पानी की समस्या, पानी कहां से उपलब्ध करें, बाकी चीजों की समस्या नहीं। हम धान की मर्यादा रख सकते हैं, हर चीज की मर्यादा रख सकते हैं, लेकिन पानी, पानी कैसे लाएं, कहां से लाएं, कुएं से लाना पड़ता है, या ऐसे बोर जिसमें से हम जीवाणु को छोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं और उनमें जीवाणुओं को वापस छोड़ सकते हैं, ऐसा बोर या कुआ। कुआं का ही बोर का ही लाने का ऐसा विधान क्यों है? जीवाणुओं की रक्षा के दृष्टिकोण से। कैसा बोर? जिसमें मशीन नहीं बिठाया गया है, या बिठाया गया है तो वहां पानी को निकालना, हाथ से खींच करके निकालने का भी कोई साधन हो तो ऐसा पानी, ऐसी व्यवस्था हो तो ऐसा ठीक। अगर वो व्यवस्था नहीं है तो कहीं से भी लाएं पानी, पानी को ला करके घर में स्टॉक कर सकते हैं। जैसे गेहूं स्टॉक करते हैं वैसे पानी भी एक साल का स्टॉक करो, एक साल का गेहूं, एक साल का पानी, एक साल का मिर्च नहीं तो हो जाने दो ना, क्या दिक्कत, उन्हीं को तो बचाना है। स्टॉक करने से भी जीव उत्पन्न होते हैं और कुएं में भी स्टॉक ही रहता है एक साल भर का, और आज का भी आया हो तो कुएं में तो सब प्रकार के जीव रहते हैं, उनको क्या करते आप, छान करके वहीं छोड़ते हैं कि नहीं? वैसे ही छोड़ना है, जिस टंकी से लिया है उस टंकी में छान कर उसी में छोड़ना है। पर एक साल का या छः महीने का, ऐसे लंबे समय तक चल सके, इतना बड़ी मात्रा में पानी को अगर आपने स्टॉक कर लिया तो प्रतिमाधारी बनने में कोई दिक्कत नहीं, जीवाणुओं को रक्षा हम कर सकते। पानी बिगड़ता है ऐसा भी सोचना नहीं, पानी गंदा होता है ऐसा भी नहीं सोचना, करके देखना है। बरसात के दिनों में बारिश का पानी स्टॉक कर सकते हैं, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अगर बरसात का पानी स्टॉक नहीं कर पाए या नहीं हो सका तो कहीं से भी कुएं पर जा करके एक बड़ी ट्रैक्टर ले जाओ, उस टंकी के कौन सा क्या बोलते हैं उसको, सिंटेक्स वाला होता है ना ट्रैक्टर, उसको एक कपड़ा बांधो और पानी खींचो। एक दिन का काम है, दो तीन घंटा लग जाएगा, एक दिन की मेहनत और टंकी भरने तक उसको कपड़े से कपड़े बांधकर उसमें डालते रहो, कपड़े को उठा लो, उल्टा करो, बाल्टी में धो लो और जीवाणुओं को धीरे से छोड़ दो और उस टंकी को ले जाओ अपने घर। कितनी भी दूर से ला सकते, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, बस उतना पानी चाहिए। कहीं से भी लाओ, एक बार लाओ, जैसे गेहूं लाने के लिए दौड़ते हैं वैसे पानी लाने के लिए भी दौड़ो। एक दिन दौड़ो साल भर में, 6 महीने में पानी स्टॉक करो, और स्टॉक करने के लिए घर में ऐसी व्यवस्था बनाओ जो बड़ी टंकी, और उस टंकी को आरसीसी का भी तैयार कर सकते वहीं पर जमीन के ऊपर, सीमेंट का भी चौक बना करके सलियां डाल करके उसमें तैयार कर सकते हैं, वो लीकेज ना हो, इस प्रकार से तैयार हो सकता है, वो सबसे श्रेष्ठ, कोई विकल्प नहीं। उसमें बांस आएगा, क्योंकि आप सोचते हैं कि ये प्लास्टिक वाली टंकियों में बांस आता है पानी, वो जरा बिगड़ता है, ऐसा यदि शंका हो तो आरसीसी तैयार कर दो, हो सकता है, जमीन पर ही तैयार हो सकता है। यदि अंडरग्राउंड में करते हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सफाई के लिए जरा दिक्कत आती है, और जमीन पर बनाएंगे तो वो सफाई के लिए भी बढ़िया हो सकता है। थोड़ी ऊंचाई पर बना लिया, हाँ, साफ सफाई के लिए आप अच्छा है, उसको साल भर में एक बार साफ भी कर सकते हैं, परंतु प्रतिनित्य आपको जीवाणुओं को छोड़ा हुआ जीव दया से सहित पानी उपलब्ध होगा, और उससे आपका पंचम गुणस्थान का निर्वाह हो सकता है, संभव है करे तो, लेकिन प्रमाद छूटना चाहिए, कौन करेगा इतना, ऐसा करोगे ना तो आलस जाएगा नहीं है। थोड़ा सा बचा हो तो उसको सफाई साल भर में एक बार साफ करते ही है ना, वो जीव तो बचेंगे नहीं। लेकिन फिर भी यदि उनको छान करके एक तरफ रखते हैं और नए पानी आने के बाद उसमें डालते हैं तो भी वो बचने वाले नहीं हैं, फिर भी डाल सकते उसमें। जितने बचने वाले बच जाएंगे, जमीन पर फेंकने की अपेक्षा उसी में जीवाणुओं को छोड़ दिया। तो साल भर में एक बार जो हिंसा इस प्रकार सफाई की होती है, इसका त्याग आपको नहीं है, क्योंकि आप उद्योगी हिंसा का त्यागी हो क्या? नहीं, उद्योगी हिंसा का त्याग तो आठवीं प्रतिमा में होता है, आरंभ त्याग, आरंभ त्याग प्रतिमा। यानी आठवीं प्रतिमा लेने के बाद आप नौकरी नहीं कर सकते, आठ प्रतिमा लेंगे तो नौकरी नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते, उद्योग नहीं कर सकते। यानी आपका नया आय कुछ भी नहीं रहेगा, जो अभी तक कमाया है संतोष के साथ धर्म जीवन जीने के लिए उसका उपयोग करना है, जो कमाया है उसमें जीवन चलाना है, नया आय नहीं है, नया आरंभ सारंभ उद्योग हिंसा नहीं। उद्योगी हिंसा का त्याग आठवीं प्रतिमा में होगा। सातवीं प्रतिमा तक आप खेती भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, और कोई धंधा पानी आपका होता है वो सब कर सकते हैं, यहां पर निषेध नहीं। तो पहली दूसरी प्रतिमा में तो है ही, आप सब कुछ कर सकते हैं, उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं है। अब टंकी जो धो रहे हैं वो किस हिंसा में आएगा? हिंसा चार प्रकार की, जरा समझ लेना इसको अच्छी तरह से। हिंसा चार प्रकार की होती है, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, संकल्पी हिंसा और विरोधी हिंसा। श्रावक इन चार हिंसाओं में से सर्वप्रथम त्यागता है तो एक संकल्पी हिंसा को त्यागता है। संकल्पी हिंसा का क्या मीनिंग है? संकल्प पूर्वक हम किसी जीव को नहीं मारेंगे। जैसे पानी है मुझे पीना है, छान करके पीऊंगा तो ये त्रस जीव बच सकते हैं, छाने बिना पीऊंगा तो ये त्रस जीव मर सकते हैं, मरेंगे ही। तो ये संकल्पी हिंसा, मर रहे हैं मरने दो, मर रहे हैं मरने दो, पानी तो मुझे पीना है, तो छाने बिना पानी पी लिया तो ये संकल्पी हिंसा कहलाई। इससे बचना है। जहां हम जीवों को बचा सकते हैं ना, जिस जिस कार्यों में जीवों को हम बचा सकते हैं उस कार्य में बचाने का यह जो संकल्प है, ये संकल्प ही संकल्पी हिंसा का त्याग है। इसमें अनावश्यक हिंसा का त्याग होता है, आवश्यक हिंसा तो होती ही होती है, इसके बीच में संकल्पी हिंसा से हम बचने लगते हैं। प्रतिमाधारी अनावश्यक हिंसा नहीं करता। कैसे अनावश्यक हिंसा नहीं करता? अपने जीवन को जीने के लिए जो काम करना चाहिए उसको करने से हिंसा होती ही है, तो ये तो हो गई आवश्यक हिंसा। परंतु कुछ काम का नहीं है, कुछ भी नहीं है, और व्यर्थ रूप से हमने वो काम कर लिया और उसमें जीव की हिंसा हो गई, तो ये अनावश्यक हिंसा। इसके लिए क्या उदाहरण दिया जाए? अनर्थ दंड, जैसे पानी को अधिक फेंकना, ध्यान नहीं देना, अधिक फेंकना, दया नहीं रखना, दया को भूल कर, धर्म को भूल कर पानी को ज्यादा प्रयोग में लाए तो अनावश्यक हिंसा हो गई। वृत्ति ऐसा नहीं करता, जितना चाहिए उतना सावधानी के साथ, क्योंकि वो पानी को देखते ही दया आ जाती है। इसमें स्थावर जीव भी हैं और त्रस जीव भी हैं, इन दोनों को बचाना मेरा कर्तव्य है, तो जितना आवश्यक है उतना ले लूं, तो ये आवश्यक हिंसा तो होती है, अनावश्यक रूप से ज्यादा हिंसा नहीं होगी, ये समझ करके व्यवस्थित रूप से संयम के साथ पानी को उपयोग में लाता है। तो कपड़े का धोना है तो पहले से सोच लेता है कितने बाल्टी लगेंगी, तो इतने बाल्टी, तो उससे एक ज्यादा बाल्टी अगर पानी आया है, किसी ने लाके रख दिया तो आपने ढोल दिया उसको भी उसके साथ, चलो अच्छा है पानी ज्यादा आया है, इसको भी साथ में ले लो, इसके साथ धो लो, ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि उस पानी को प्रयोग में लाने से हिंसा तो होने वाली है, परंतु अनावश्यक हिंसा होने वाली। अब एक्स्ट्रा बाल्टी, एक बाल्टी पानी अधिक आया है तो इसको ऐसा नहीं करेगा, मुझे जितना लगता है उतना ही लूंगा, ऐसा मनुष्य के जीवन में आवश्यक हिंसा बहुत कम होती है। अनावश्यक हिंसा करके ही ये ज्यादा पाप कमाता है, तो कम से कम उससे तो बच सकते हैं। ये प्रतिमा के लक्षण है। प्रतिमा लेने से पहले हमको ये संकल्प करना चाहिए कि अनावश्यक हिंसा कहीं भी हम नहीं करेंगे। ये कितनी बड़ी साधना है, ये कितना बड़ा धर्म है। हाँ, घर में रहकर सबसे बड़ा धर्म है ये, अनावश्यक हिंसा से बचना। कहाँ कहाँ पर कैसे सोचना चाहिए, प्रत्येक विषय में, वस्त्र है उसके प्रति स्वामित्व है, स्वामित्व है तो वस्त्रों का प्रयोग भी होता है, तो जितने वस्त्र प्रयोग में आते हैं उतने ही वस्त्रों को रखना, अधिक नहीं रखना। क्या मतलब है अधिक रखने से, अलमारी भरी हुई है ऐसे ही रखे रखे जा खराब हो रहे हैं वो, और उन वस्त्रों को न तो किसी को देते हैं और न खुद पहनते हैं, और ये कभी काम में आएंगे, किसी न किसी काम में आएंगे ऐसा कह करके उसको ऐसे स्टॉक में रखते हैं। प्रतिमाधारी वस्त्रों को ज्यादा स्टॉक नहीं करता, जितने आवश्यक हैं आवश्यकता को समझो, 10 है आवश्यक तो 10 रखो, 15 है आवश्यक तो 15 रखो, आवश्यकता को पहले विचार करो कितने आवश्यक हैं, तो उतने रखो। ऐसा नियम नहीं कि 2 ही रखो, 3 रखो, 4 रखो, ऐसा नियम नहीं, आपको आवश्यक कितना है सोचो, मेरा जीवन कितने रखने से चल सकता है। महाराज, हमारे रिश्तेदार भी कभी कभी आते हैं और उनको देना पड़ता है, कभी कभी हमारे घर में आहार देने के लिए कई लोग आ जाते हैं तो उनके लिए भी 16 डालना पड़ता है, कुछ अधिक रखते हैं, रखो ना, कौन मना करता है। आवश्यकता को पहले समझो, अनावश्यक को हटाओ, पहले एक सीमा खींचो, रेखा खींचो। आपके घर में कोई भी आते हैं उनके उद्देश्य कितने चाहिए, 1000 चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो कितने चाहिए, तो 3-4 अधिक चाहिए, 8-10 अधिक चाहिए, तो 8-10 रखो, एक सीमा खींचो। अष्टमूल गुण में ये ने काम नहीं किया था, अष्टमूल गुण में तो जरा भी त्याग नहीं हुआ था, अष्टमूल गुण में तो ये हुआ था कि जो मेरे शुभ कर्म के उदय से, अंतराय कर्म के क्षोभ सम से, जो उपभोग अंतराय के कर्म के क्षोभ सम से उपभोग सामग्री वस्त्र आदि ये आएंगे, उतना संतोष के साथ ग्रहण करूंगा, ज्यादा की इच्छा नहीं रखूंगा, अति इच्छा हानिकारक है। 8 मूल गुण में अति इच्छा का त्याग हुआ था और संतोष वृत्ति पर आए थे, त्याग कुछ भी नहीं हुआ था। अनावश्यक इच्छा का त्याग किया था आपने, अनावश्यक रूप में अधिक परिग्रह में मैं इच्छा नहीं करूंगा, और मेरे भाग्य से जो सामग्री मिली है उसमें संतोष वृत्ति से जीवन जीऊंगा, ये संतोष भाव आया था। अब प्रतिमा में क्या आता है? प्रतिमा में ये आता है, अब बहुत परिग्रह हैं, संतोष वृत्ति तो आ गई है, इसके बाद की सीढ़ी अब चढ़ो चढ़ो, अब संतोष के बिना अगली सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। मनुष्य के अंदर संतोष ही नहीं है, हाय 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 हाय, करोड़पति बनने के बाद भी अरबपति बनने का उद्देश्य, कमाने का उद्देश्य, संग्रह करने का उद्देश्य जो होता है, ये संतोष वृत्ति की कोटि में नहीं आता। अष्टमूल गुण हमारे लिए संतोष वृत्ति दिलाते, परिग्रह का त्याग नहीं कराते, इच्छाओं पर अंकुश लगाते। इच्छाओं पर अंकुश लगाओ, पंच पाप जो होते हैं इस पर इच्छाओं का अंकुश, ये हो सकता है कि नहीं? ये तो सबको हो सकता है, मानव मात्र को हो सकता है। संतोष जीवन का जीना ही तो अष्टमूल गुण है, ये तो आसान है, लेकिन प्रतिमा इसके बाद की जो सीढ़ी है इसमें विशेष रूप से इच्छाओं का निरोध, आवश्यक परिग्रह में भी फिर वह कम करने लगता है। परिग्रह था, इतना आवश्यक था ही, परंतु उसके अंदर और कम करने का लक्ष्य बनाकर धीरे धीरे मैं इनको पूर्णतः त्याग करके संयम धारण करने वाला हूँ, दिगंबर दीक्षा लेने वाला हूँ, इसलिए प्रतिमाओं को धारण करके परिग्रह को थोड़ा 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 11 सीढ़ियों पर थोड़ा 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 कम करता हुआ जाऊंगा, ये संकल्प करता है। प्रतिमाएं आसान हैं, कोई कठिन मत समझो, पहाड़ मत समझो, कौन करेगा इतना सब, कोई सहयोग नहीं देगा, सहयोग की भी अपेक्षा मत रखो, सेल्फ डिपेंड रहो, सेल्फ डिपेंड होकर के भी आसान है, कोई सहयोग नहीं भी देता है तो आसान है। व्रतों को किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर के कभी लिया नहीं जाता, कोई घर में सहयोग दे या न दे, अपन को सेल्फ डिपेंड होकर के ये काम कर सकते हैं क्या नहीं, ये विचार करना है, ये सोचना है। सोचेंगे ना, क्या सोचना? कुछ नहीं, एक पानी का सोचना है और दो बार सामायिक करना है, और परिग्रह जितना कम हो सकता है, अनावश्यक परिग्रह को हटाओ, अपने परिवार को सौंप दो, और आवश्यक आप अपने पास रखो, उसमें अपना संयममय जीवन व्यतीत करो, ये परिग्रह प्रमाण अनुव्रत है, ये परिग्रह प्रमाण अनुव्रत। कितना है इनकम? बहुत है। तो कितना आवश्यक है आपको? सभी है, तो प्रतिमा मत लेना। जितना परिग्रह हो सभी, क्या आवश्यक है? कितने में आपका धर्म चल सकता है ये देखो। धर्ममय जीवन जीने के लिए कहीं बाधा ना हो, समस्या उत्पन्न ना हो, उसका विचार करो और उतना सीमा बना लो, और बाकी को क्या करना, स्वयं की जिम्मेदारी से नहीं रखना, दूसरे के नाम से कर देना। किसके नाम से? अपने पुत्र पुत्रियों के नाम से। ये जो इनकम है आपको कितना आवश्यक है, स्वयं के लिए सोचो। क्या सभी आवश्यक है? करोड़पति है तो करोड़ रुपए चाहिए आपको? नहीं, इतना क्या करना है? तो कितना चाहिए आपको? हमको 4-5 करोड़ पर्याप्त है। सोचो तो सही, कितना करोड़ आवश्यक है सोचो। पर ऐसा सोच के मत बैठो कि 5 करोड़ तो अभी हैं, हमको तो केवल 10 करोड़ चाहिए। कम हो तो ज्यादा की इच्छा नहीं करना है। जो कमाया है, जीवन चल रहा है और चल भी सकता है, कितने में चल सकता है ये देखना है और उतना ही रखना है, बाकी को अपने संतान के नाम से करना है। यानी ये संलेखना की तैयारी, मरण के काल में जेब में चाबी निकालकर संतान को देने की अपेक्षा पहले से ही आधा दे दो। ये संलेखना की तैयारी शुरू हो गई। देखो यहां लास्ट में देने वाले थे ना चाबी, वो अभी से ही देने लगे। मैं ज्यादा नहीं रखूंगा, क्योंकि ज्यादा रखेंगे तो उसका पाप तो लगने वाला ही। आप स्वयं के नाम से जितना चाहते हैं उतना रखो, बाकी सब दूसरे के नाम से कर दो, और फिर उसको भी कम करते हुए चलो। अब 5 करोड़ में अगर 2 प्रतिमाएं पल रही हैं तो पालो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर 10 करोड़ है इनकम, मान लो कि मेरा 5 करोड़ में चल सकेगा, तो 5 करोड़ रखो और 5 करोड़ दूसरे के नाम से कर दो। ये परिग्रह प्रमाण अनुव्रत है। यहां पर प्रमाण आ गया। हाँ, पर डे, हाँ 32 रुपए में चल सकता है तो 32 रखो पर डे। लेकिन समय बदलता है, नोट भी बदलते हैं, भाव भी बदलते हैं। भाव का मतलब वस्तुओं का भाव बदलता है, उस हिसाब से भी चलना पड़ता है, एडजस्ट करके चलना है। ऐसा नहीं सोचना कि हमने रुपये पैसे का जो सीमा कर लिया उसमें अगर नहीं चल पाया तो क्या करोगे। वर्तमान की अपेक्षा से तो चल रहा है, भविष्य की अपेक्षा से नहीं चल पाए तो क्या करोगे। तो इस भाव की अपेक्षा से उस भाव में जीना पड़ेगा आपको, जिस जितने में चल सकता है उतने में चलाना। वो परिग्रह चाहे आपको बढ़ाना पड़े क्या घटाना पड़े, चलने लायक परिग्रह रखना है, परंतु सीमा तो खींचना ही है। क्योंकि हम ये नहीं करेंगे तो वृत्ति नहीं बनेंगे, परिग्रह प्रमाण नहीं कहलाएगा। परिग्रह को सीमित बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि शेष का पाप मुझे न लगे, शेष 5 करोड़ का पाप न लगे। 5 करोड़ का जो लग रहा है वही लगने दें, शेष 5 करोड़ का एक्स्ट्रा का न लगे। सीमा बना ली और भविष्य में जाकर के इसमें नहीं चल रहा है तो आप बढ़ा सकते काल परिस्थिति से, क्योंकि संयम में जीवन चलना आवश्यक है आपको, तो जितने में चलता है उतना ही। और मान लो भविष्य में अपन ने 5 करोड़ का किया था और 5 करोड़ भी ज्यादा लगने लगे तो उसको भी कम करो। 1 करोड़ में चल सक रहा है तो 4 करोड़ और निकाल दो। स्वामित्व छोड़ते 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 जाने का नाम प्रतिमा है, मूर्छा परिग्रह। परिग्रह पाप बंध का कारण, मूर्छा परिग्रह का कारण, मूर्छा भाव को त्यागना है, कम करते हुए जाना है। हाँ,
कुछ लोग ऐसे हैं अंत समय में परिग्रह त्याग करते हैं। आपने तो परिग्रह सब त्याग किया है, इसको हमारे सामने आप बैठे हैं, आपका उपदेश तो हो रहा है, मन में चल रहा है, इसके बारे में एक ऐसा है। कोई भी नहीं जान रहा है, खुद जान रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना प्रभाव आपके वाणी का भी हो रहा है हमारे मन में,
वो लग रहा है कि नहीं,
कुछ लग रहा है,
प्रतिमा के भाव बन रहे हैं कि नहीं,
इसलिए तो हम बन रहा है, हाँ। बता रहा है आपको।
अब भाव बने या ना बने, पहला प्रतिमा का स्वरूप समझना आवश्यक था, आपको ज्ञान देना आवश्यक था प्रतिमा के संबंध में क्या लिखा है आगम में और उसको कैसे पालन किया जाता है, इसका ज्ञान सर्वप्रथम सबको चाहिए था। अपन ने ज्ञान दिया है, अब उस ज्ञान को लेकर के आगम का ज्ञान है ये, अब अपने जीवन के साथ उसका विचार करना है कि हम अपने जीवन में अपने को क्या बना सकते हैं, कितना बना सकते हैं। ज्ञान तो मिल गया, मिल गया, हाँ ये बहुत अच्छा है, सेल्फ डिपेंड बन गए तो जिम्मेदारी उतर जाती है, क्योंकि जितना सेल्फ डिपेंड आप होते जाएंगे उतना आप अपने जिम्मेदारी को दूसरे को सौंपते सौंपते खाली होते जाओगे, और ये अंत समय में बनने का काम नहीं है। संलेखना ऐसा नहीं कि अंत समय में हमने चाबी निकाल करके दे दिया, हमने सब त्याग कर दिया और पंचम गुण स्थान प्राप्त हो जाए, कभी संभव नहीं, ये कभी संभव नहीं है। संयम एक साधना का मार्ग है, साधना लास्ट में अंतर्मुहूर्त करोगे मरते समय नहीं, जीवन भर संयम की साधना का उपदेश दिया है। जब आप जाग गए तभी से संयम का ग्रहण होना आवश्यक है, और आपका पालन वह देश संयम का प्रतीक है। जीवन पूरा पंचम गुण स्थान में निकले, ये कर्म निर्जरा का सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि अंत में जाने से अंतर्मुहूर्त तक ही कर्म निर्जरा करोगे और जीवन में जल्दी धारण करोगे संयम को, तो पूरा जीवन कर्म निर्जरा में जाएगा, व्यापार अधिक होगा। हाँ तो ये सोचना है, कर्म निर्जरा के लिए व्रत लिए जा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा दिन हमारे संयम में निकले, इस भावना के साथ संयम धारण करने का कोशिश करना है। शेष विषय प्रतिमाओं का स्वरूप, 11 प्रतिमा सभी का स्वरूप समझाना है, कल समझाएंगे। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाते जिन वाणी जयवंतो मां जग में। जब तक सूरज चांद रहे शीश न वाते कर्म हरो मां, अब तक हम विषयांध रहे, अब ना हम विषयांध रहे।